नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना की वृद्धि हुई है।
महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापानी कंपनियों से उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है, ताकि भारत में निवेश करने वाली उच्च तकनीक कंपनियों को उपकरण और कलपुर्जे समय पर मिल सकें। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक संबंधों पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार के लिए सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बूथ स्तरीय अधिकारियों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने की अपील की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने ईद ए मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद ए मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।